नमस्कार, फ्लोटिंग विद द फिश पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं चांद निज़ामी साहब। आपने उनके संगीत को रॉक स्टार, बजरंगी भाईजान जैसे बहुत ही फेमस फिल्म्स में ज़रूर सुना होगा और शायद इनको किसी म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स में भी सुना होगा। निज़ामी बंधु के नाम के ग्रुप से जाने जाते हैं, लेकिन ये पॉडकास्ट निज़ामी बंधु या सूफ़ी म्यूज़िक के बारे में उतना नहीं है जितना खास चांद निज़ामी साहब के बारे में है। सो आइए उनके बारे में जानते हैं और उनके साथ साथ कवाली और म्यूज़िक की डेप्थ को भी उनसे समझते हैं। निज़ामी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आपके म्यूज़िक से हम वाकिफ़ हैं, लेकिन आपके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सुनने को पढ़ने को नहीं मिला है। तो जो आपकी जर्नी है, जो अब आप इतने फेमस हैं, से जहाँ से आपने शुरू किया था उसके बारे में थोड़ा सा अपने शब्दों में हमें बताइए, आपकी जर्नी कैसी रही है?
अब असल में तो बात यह है कि अपने बारे में क्या बताऊं, बस मेरा ख़ानदानी काम है और मेरे यहाँ पिछले काफ़ी अरसे से, एक ज़माने से, अगर मैं कहूँगा 250-300-400 साल तो शायद गलत नहीं होगा, क्लासिकल और सूफी कवाली 8 साल की उम्र से मैं गा रहा हूँ। और पहली बार गाना गाया एक दरबार था राजस्थान में, एक जगह है झालावाड़, वो वहाँ मैं गाया। उसके बाद तो फिर एक सिलसिला शुरू हो गया। मेरे घराने का ताल्लुक है सिकंदर खान का, हाल में रिश्तेदारी हमारी काफी लोगों में है, आगरा घराने में भी है, दिल्ली घराने में भी है और खुर्जा घराने की भी है, लेकिन जो मेरा अपना घराना वो दिल्ली घराना है। हमारे ग्रुप का नाम इस वक्त जो है वो निज़ामी बंधु है। मेरे बेटे भी गाते हैं और मेरे भतीजे जो हैं वो भी गाते हैं।
जान साहब, कव्वाली का असली मतलब क्या है?
दरअसल कव्वाली जो है ना वो कई तरीके के लोग आजकल समझते हैं। असल में तो कव्वाली वही जिसमें अल्लाह रसूल मुजुआद्दीन का नाम आए, लेकिन आजकल जमाना दौर बदल गया तो कव्वाली कई किस्म की हो रही है आजकल, और कव्वाली में कई तरह के मतलब फ्यूजन होते हैं और क्या कहते हैं कंपटीशन हो रहा है, वो म्यूजिक बज रहा है जिससे हम ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, वो सब कव्वाली की अलग अलग तरीके हैं। लेकिन असल में जो कव्वाली है वो कव्वाली है जो खानकाहों में दरगाहों पर गाई जाती है, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरबार है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का, हज़रत साबिर पाक का, तो हम उसी कव्वाली को पेश करते हैं। और वैसे तो आजकल एक कंपटीशन भी होता है कव्वाली में, एक लेडीज़ पार्टी है, एक जेंट्स पार्टी है, अब उन दोनों में वो एक कंपटीशन चल रहा है, लेकिन उसका रूहानी से कोई ताल्लुक नहीं है। रूहानी से ताल्लुक है हज़रत अमीर खुसरो का कलाम, कबीर दास का कलाम, बाबा बुल्ले शाह उनका कलाम, बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम।
जैसे आपने अपना म्यूज़िक का जर्नी अपने भाई के बाद में स्टार्ट किया, तो और उनका नाम काफ़ी इस्टेब्लिश था, लोग जानते ही थे उनको, तो क्या उनके नाम का आपको कुछ फ़ायदा मिल पाया या आपको सब कुछ अपने दम पे शुरू से पूरा स्टार्ट करना पड़ा?
12-13 साल का था मैं, तो जाहिर है वो खेलने की उम्र होती है बच्चे की, लेकिन वो हमारी 12-13 साल के बाद हमें पता चला कि भाई बीमार, मतलब हमने बातें सुनी लोगों से तो फिर हमने कुछ कोशिश की। जब तक तो हम खेल कूद में रहते थे, तो मैंने कहा भाई जिम्मेदारी समझनी चाहिए, वालदा भी कहती थी मेरी कि भाई कुछ कर तू कर, तो फिर हमने फिर वाले साहब को हम क्या भाई अब हमें कुछ फिर और सिखाओ आप, तो वाले साहब बहुत खुश हुए इस बात से, फिर हमने उनसे सीखा। फिर मेरे मामू हैं उस्ताद शराफत हुसैन खान साहब आगरा तुली घराने के, जो पद्मश्री मिला था, उनसे भी हमने थोड़ा बहुत सीखा। तो मतलब ये कि फिर हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी यार दोस्तों को सबको छोड़ दिया, फिर हमने जैसा भी था उल्टा रियाज किया, बाजा सीखा, अच्छा, हमारा कव्वाली के अंदर एक बहुत खास बात है कि अगर आप चाँद तिलक सब चीनी मुँह से नैना मिला के गा रहे हैं तो आपको किस तरह से उसको, किस तरह से बोल उसका बनाना है, किस तरह से उसको कहाँ ला के ख़त्म करना है उस बोल को, फिर कहाँ से शुरू करना है, ये सब बड़ी 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 बहुत खास चीज़ें होती हैं। तो वो जो बारीकियाँ होती हैं कव्वाली की, वो मैंने वाली साहब से सीखी। जैसे बाकायदा क्लासिकल के अंदर हमारा एक रिवाज है कि तानपुरा लेके उस्ताद बैठते हैं या शागिर्द बैठता है, वो पता चला 8-8 घंटे 10-10 घंटे 20-20 घंटे लोग रियाज करते थे। उसी तरह से हमने भी अपने वाले साहब से 8-8 घंटे 9-9 घंटे 6-6 घंटे 7-7 घंटे करके सीखा। देखिए मुश्किलें तो आती हैं, परेशानी तो आती है, क्योंकि आजकल कंपटीशन का बहुत दौर है और हम लोग जो हैं, हमारे नाम के आगे लगा है सूफी कव्वाल, तो दिक्कतें ये आएंगी साहब, यार वो तो ये कर रहा है वो कर रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो वही हैं लकीर लकीर के फकीर। लेकिन हमारे वाली साहब ने हमसे कहा कि नहीं बेटा, दुनिया कुछ भी करे, तुम अपनी जो एक पहचान है उसको मत छोड़ना। तो इसलिए मैंने इधर उधर की कव्वाली ना गाकर अपनी से एक यही पहचान बनाई है। उर्दू में कहते हैं हम जब तक हयात हैं हम चाहते हैं कि हम यही गाते रहें और लोगों को सुनाते रहें।
तो एक कलाकार की खास रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, होती भी हैं कुछ कि नहीं, समाज के प्रति और कलाकारों के प्रति, अपनी कला के प्रति?
कोई भी फनकार हो, आर्टिस्ट हो, कलाकार हो, जो मेरे वाले साहब मुझे बताते थे वो बिल्कुल सही कहते थे, मुझे अब आके उस चीज़ का अंदाजा हो रहा है। वो कहते थे बेटा आर्टिस्ट जो है उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, वो सिर्फ जनता की वजह से आवाम की वजह से जीता है, इसलिए हमें हर तरह का ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे लिए 10 आदमी खड़े में बैठे में, यार वो निजामी बंधु आएंगे वो गाएंगे, पता चला हम जो आए तो हमें आवाज़ कहीं जा रही है, सुर कहीं जा रहा है, ले कहीं जा रही है, तो अब उनकी बातें जो है ना वो यार वो सही कहते थे। अब हम जरा सी कहीं गाते हैं तफाक से तो कोई आवाज़ अलग लग गई या कोई सुर अलग लग गया तो एहसास होता है, तो हालांकि पब्लिक कुछ कहती नहीं है लेकिन हमें पता चल जाता है। तो गाने वाले को अपना भी ख्याल रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ख्याल रखने से मतलब ये कि खाने पीने के अंदर आजकल क्या है कि मेरे भाई बंदे हैं, मैं भी अपने आप को करूँ, ये खा लिया वो खा लिया, ठंडा गरम और तली हुई चीज़ें जो कि इस वक्त गाने वाले के लिए जहर है।
चांद साहब, जब हम कोई भी सूफी म्यूज़िक सुनते हैं तो ऑब्वियसली छाप तिलक कुन फाया को इसको हम सब जानते हैं और हमारे हिसाब से तो यही सूफी म्यूज़िक होता है, लेकिन ऑब्वियसली जब मैं इसको समझने की कोशिश कर रही तो बहुत कुछ पता चला कि ये तो सिर्फ बॉलीवुड वाला सूफी म्यूज़िक है, पूरा ये पूरा सच नहीं है। बट आप फिज़िकल कॉन्सर्ट्स करते हैं तो आप किस तरह से लोगों को सूफी का मतलब समझाते हैं और समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं?
तो लोग ये समझते थे कि मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ कि यार ये आएंगे कुन फाया कुन गाएंगे या धमाधम अंदर गाएंगे, धमाधम उसके अंदर एक अच्छी गाएंगे खत्म कर देंगे। अब पता चला कि कुन फाया कुन तो मैं गा रहा हूँ 2 घंटे के बाद, 2 घंटे पहले मैंने अपनी कव्वाली सुनाई, उससे लोग बड़े मुतासर हुए, बड़े खुश हुए। अरे चांद भाई आप तो, हम तो समझते थे कि आप खाली फिल्म में। मैंने कहा भाई मेरा खानदानी काम है, तो ऐसा हो जाता है। तो लोगों को मैं अपने गाने के जरिए समझाता हूँ, जब वो समझते हैं कि असल में आप शायद सुन के हैरत करेंगे, कई लोगों को ये कहना कि चांद भाई हमें आज आपको सुन के पता चला कि सूफी कव्वाली क्या है, आप यकीन करें। ये मैं कोई मतलब झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सरकार जानते इस बात को और मैं इस तरह की बातें करता भी नहीं हूँ। तो मुझे मेरी आंखों में आंसू आए, मैंने कहा यार आज मेरी वजह से वो लोग कौन जो मुझसे भी कम से कम 20-20 साल बड़े, 25-25 साल बड़े, क्योंकि वो क्या सुनते थे, वही लेडीज का वो फिल्मी कव्वाली, वो फिल्मी वजह से कव्वाली आती थी कि वो हीरो 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 विलन लड़ रहे हैं उस, वही वो लोग समझते थे ये कव्वाली है। असल में कव्वाली जो है वो ये है जो खानकाह में होती है, जो हम स्टेज पे अब गाते हैं, बड़े बड़े स्टेज पे गाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्रामों में गाते हैं हम, और जब उनको पता चलता है कि यार ये तो मैंने रोते हुए देखा लोगों को, छाप तिलक पर कुन फाया कुन पर मैंने लोगों को देखा रो रहे हैं लोग। बल्कि एक वाक्य तो मैं ऐसा सुनाऊंगा आपको, आप शायद यकीन करें ना करें क्योंकि आपने ये सवाल नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक प्रोग्राम में गया तो 2 लड़कियाँ मेरे पास आई एक अपनी वालदा के साथ, वो आके मेरे पैरों पर, अरे मैंने कहा जी क्या हो, कहने जी हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं, हम तो आज आपके दर्शन हो गए। और हम आपसे आपका बहुत बड़ा एहसान मानते हैं। मैंने भाई क्या एहसान मानते हैं, मेरे रॉक स्टार देख लिया आपने, सुन लिया, मुझे सुन लो एहसान किया कि नहीं। फिर उसमें एक लड़की ने बोला देखिए सच नाम अल्लाह का, हमारा जो सच बात होती है ना तो अल्लाह की तरफ से आवाज आती है। उस लड़की ने बोला कि ये जो आपके सामने खड़ी है ये आपकी कव्वाली की वजह से जिंदा है। अरे मैंने कहा कैसे, कहले इसका हार्ट का ऑपरेशन था और डॉक्टर ने कहा था कि मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, उससे पहले कोई ख्वाहिश है तुम्हारी? तो उसने बोला मेरी ये ख्वाहिश है कि कुन फाया कुन मुझे कव्वाली सुनाई जाए। आप यकीन करें, कहेंगे उसका वो ऑपरेशन कुन फाया कुन कव्वाली सुनाई, उसका ऑपरेशन हुआ और सक्सेस हुआ, बहुत कामयाब ऑपरेशन। ये खड़ी हुई आपके सामने, तो हमें समझाने की जरूरत शुरू शुरू में तो पड़ी, लेकिन अल्लाह के करम से अब हमें ना समझाने की जरूरत, अब लोग खुद ही समझ जाते हैं कि हाँ यार ये तो सूफी हैं। एक दफ़ा अभी तकरीबन 8-10 साल पहले की बात है, मैं अमेरिका गया था, मेरा प्रोग्राम था और एक कवाल और आए थे जो ऑर्गेनाइजर मेरा था, अपने दोस्तों से कहा कहें यार वो फला फला कवाल आया था उनका कैसा प्रोग्राम रहा जो हमसे पहले गए थे। अरे कह लगे यार बस समझ रहे हो तुमने कल का प्रोग्राम नहीं देखा या सुना, तुमने कुछ भी नहीं सुना। अगले दिन हमारा प्रोग्राम था ही, तो वो हमारे प्रोग्राम में भी आया, तो हमारा प्रोग्राम तकरीबन 5.5 घंटे तक कंटिन्यू चला। तो वहाँ वो आया लगा तो उसने बोला यार वो फला फला का वाला आया थे, बड़ा ज़बरदस्त गाए थे और आज तो मैं थोड़ी देर के लिए आ गया हूँ क्योंकि तू मेरा दोस्त है यार, ऑर्गेनाइजर है। जो ऑर्गेनाइजर था 5.5 घंटे के बाद उसने देखा था उसका दोस्त फिर वही बैठा हुआ है, उसने उसको बुलाया, उन्होंने कहा यार तू गया नहीं? कहने लगा यार गया नहीं, कहने मैं क्या बताऊं, कहने क्या हुआ, कहने गाना कव्वाली तो असल में आज निजामी बंदों ने गाई है, मैं तो 10 मिनट के नहीं आया था, आधे घंटे के नहीं, क्योंकि वहां के लोगों को तो बड़ी टाइम कहाँ होता है। फिर वो आके मुझसे मिला, उसने मिलवाया, फिर उसने अपनी जबान से मुझे ये बातें बताई जो मैं आपको बता रहा हूँ। कहले यार चांद भाई आप वाकई आप ही हो। मैंने कहा नहीं, मैंने हमारे पास कुछ नहीं है, जिनको आपने कल सुना था मैंने कहा वो बहुत बड़े फनकार थे, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ।
तो आज के जो युवा कव्वाल हैं उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या चॉइसेस हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो पूरे एक टेक्नोलॉजी के दौर से गुजर रहे हैं और अगर वो ख़ानदानी तौर पे कव्वाली परिवार से आते हैं, कव्वाल परिवार से आते हैं, तो उनका दिल शायद वहाँ पे बंधा भी होगा। लेकिन आपके ज़माने की बात और थी और आज के ज़माने की बात और है, आज के कव्वालों के साथ क्या चॉइसेस हैं, क्या ऑप्शंस हैं और आपसे ज़्यादा हैं कि कम हैं?
भाई ये बात तो देखिए जब ही पता चलेगी कि जब हमारा कुछ मामला नीचे आता जाएगा, तो अभी तो ये है कि वो मेरे साथ हैं, लेकिन आने वाले 5-6 साल के बाद शायद पता चलेगा कि वो जो हम कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं।
चांद साहब जैसे कि हमारे काम में हम काफ़ी सारे कलाकारों से बातचीत करते हैं, तो एक चीज़ बार बार सुनने को मिलती है कि कलाकार की लाइफ जर्नी बहुत लंबी होती है और जिसको भी एक इंसान सक्सेस कहता है वो ज़्यादातर लोगों की बहुत टाइम लग जाता है आने में, तो कभी कभी नहीं भी मिलती है सक्सेस। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचते हैं कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लग रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको लाइफ भी चलानी है, तो अगर एक टाइम लग रहा है तो छोड़ देना चाहिए, रहने देना चाहिए और कोई और करियर चूज़ कर लेना चाहिए, या उस पर लगे रहना चाहिए? और अगर लगे रहे तो क्यों लगा रहे अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो?
आर्टिस्ट की जो मेहनत है ना, कोई भी कलाकार हो अगर वो रियाज करेगा, प्रैक्टिस करेगा, यानी साधना से बोलते हैं जो गाएगा अपना रियाज करेगा, तो उसको वो जब वो रियाज करेगा जब तो वो कहेगा यार मैं कब से गा रहा हूँ यार, 3 साल हो गए या 4 साल हो गए या 5 साल हो गए, मैं यार कुछ हो नहीं रहा। लेकिन उसको ये नहीं सोचना चाहिए, उसको जरूर मौका देता ऊपर वाला। ये कव्वाली के अंदर नहीं है, ये हर फील्ड में हर काम में है। अगर वो कुछ काम करेगा, मेहनत करेगा और उसको सलीके से सीखेगा या करेगा तो उसको जरूर कामयाबी मिलेगी।
चांद साहब दौर के साथ में संगीत ने भी काफ़ी परिवर्तन लिया है, आजकल के यंगस्टर्स को म्यूजिक बहुत डिफरेंट पसंद आता है पहले के ज़माने से, लेकिन आप जैसे कई सालों से म्यूजिक परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि जो आज के ज़माने के लिए चेंजेस चाहिए म्यूज़िक में, जो आज के यंगस्टर्स को इंटरेस्ट करते हैं, क्या वो क्लासिकल टाइप का जो म्यूज़िक होता है, पुराना म्यूज़िक होता है, शुद्ध प्योर म्यूज़िक होता है, उसमें वो चेंजेस लाने चाहिए या उसको प्योर ही रहने देना चाहिए?
جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوک چینل کیا ہے وہ کوک اسٹوڈیو, اس میں ماشاء اللہ بہت اچھا ہے, لیکن وہ کیا ہے گانے والا تو وہ پرانا ہی ہے, پرانی چیز گا رہا ہے وہ, لیکن اس کے ساتھ انسٹرومنٹ کم سے کم میں سمجھتا ہوں 15-20 انسٹرومنٹ اس کے ساتھ بج رہے ہیں, اور بڑے بڑے جو میوزیشین ہیں وہ بجا رہے ہیں, گانا تو پرانا ہی ہے نا, اور اس کو نئے انداز میں وہ لوگ پیش کرنا چاہتے ہیں, تو اچھی بات ہے, وہ بھی میں کرتا ہوں اور میں نے کیا بھی ہے, بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاند بھائی یہ ہم نے بہت دفعہ سنی شاپ تلک سب چیز, ہم نے فلاں سے سنی صابری برادر سے سنی, اور وہ فلاں قوال سے سنی, فلاں جعفر حسین بدانی قوال تھے ان سے سنی, نام لیتے ہیں لوگ, لیکن آپ سے سنی تو, اور ہم تو اس چیز کو کم سے کم 20 سال سے سن رہے ہیں, 25 سال سے, لیکن آپ سے سنی تو ہمیں کچھ الگ ہی لگا, تو یہ تو اوپر والے کی مہربانی ہے, اس میں پتہ نہیں ان کو کیا لگتا نیا, ہوتا کیا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ قوالی کے شعر کو سات تلک سب چھینی وہ سے نینا ملا کے, یہ کوئی بھی شعر ہے اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے یہ سیکھنا پڑتا ہے, جو میں نے اپنے والد سے سیکھا, اپنے چچا سے استاد حیات نیا نظامی میرے چچا لگتے تھے, نثار حسین نثار خان صاحب میرے والد محمود نظامی میرے بڑے بھائی فرید بھائی, تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا چھاپ تلک سب چھینی رے مو سے نینا, وہ تو تم کیا لوگے, لیکن تھوڑا سا اس کو بنا کے تھوڑا مرغی کے ساتھ.
چاند صاحب جب آپ نے اپنے بچپن میں قوالی سیکھی اور آج جیسے آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو آپ سکھاتے ہو, تو اس سمے کے سیکھنے اور سکھانے کے طریقے اور ابھی میں کوئی فرق ہے کہ قوالی تو اسی طرح سے سکھائی جاتی ہے اور اسی طرح سے آپ بھی سکھا رہے ہو؟
قوالی ایک تو سب سے بڑی بات تو یہ کہ قوالی سیکھنے کے لیے کوئی یہاں ہندوستان میں میرے خیال سے کوئی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے, کلاسیکل سیکھنے کے لیے آپ کو بہت بڑی بڑی جگہ اسکول مل جائیں گے, ہم سکھاتے ہیں میرے شاگرد بہت ہیں, لیکن ہم جنہیں سکھاتے ہیں ہم انہیں وہ سکھاتے ہیں جو ہم سیکھے ہوئے, لیکن آج کل لوگ کہاں سیکھتے ہیں اسے, وہ آج کل کیسے ویسے ڈالے ہیں, وہ سی ڈی لے آئے کیسے, آج کل تو اس کا زمانہ ہے, یوٹیوب کا زمانہ ہے, اس پر تمام کلاکاروں کی قوالیاں بھری ہوئی ہیں, آرٹسٹوں کی, لوگ اس کو سن سن کے کرتے ہیں.
تو سرکار کا گورنمنٹ کا کس طرح کا رول ہوتا ہے آرٹ اینڈ کلچر میں؟ کیا یہ انڈیویجولس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آرٹ اینڈ کلچر کو گرو کرنے دیتے ہیں اپنے اراؤنڈ, اور گورنمنٹ اس میں کیا ہی کر سکتی ہے, یا گورنمنٹ کا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اور جو گورنمنٹ کرتی ہے اس کے بعد وہ سوسائٹی میں دکھتا ہے, ہمیں اویلیبل ہوتا ہے؟
جو بھی سرکار آنے والی ہے یا چل رہی ہے وہ آرٹسٹوں کو آگے بڑھائے, اور لیکن اس وقت جو ہمارے دلی کے چیف منسٹر ہیں وہ بہت کوشش کر رہے ہیں, جو بات ایمانداری کی, میں سمجھتا ہوں دلی کے جو کلاکار ہیں زیادہ تر, کیونکہ میں دلی میں رہتا ہوں, سبھی کے پروگرام کراتے رہتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ آنے والی سرکار جو ہے یا جو سرکار ہے اس وقت یا جو سینٹرل گورنمنٹ ہے یا جو بھی ہے, ان کو سب کو چاہیے کہ آرٹسٹوں کا خیال رکھیں اور ان کو موقع دیں, ان کو ایسا بھی موقع دیں کہ وہ جو کیونکہ یہ بھی ایک پرانی چیز ہے نا قوالی, جیسے خیال گائے جیسے کلاسیکل ہے, سنگیت تو ہمارے ہندوستان میں آج سے تھوڑی ہے, ہزاروں لاکھوں سال سے ہمارے ہندو دھرم میں جو ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا وہ تو لاکھوں سال سے چلا آ رہا ہے, لیکن اس کو جو مطلب جو بڑے ہیں تو بڑے ہیں, کسی کا بڑا نام ہے تو بڑا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو بھی موقع دینا چاہیے, وہ چاہے قوالی فیلڈ میں ہو چاہے کلاسیکل میں ہو یا لائٹ میوزک میں ہو کیسے بھی ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ سرکار ہماری آگے آئے اور مجھے بھی موقع دیں, سب کو دیں.